नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद निशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चौथे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को दिया 222 रन का लक्ष्य। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सूर्या करिश्मा तामिरी और ऋत्विक संजीव एस ने खिताबी मुकाबला जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2025 खेल के लिहाज से एक यादगार साल और वर्ष 2025 का आखिरी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम उत्साह के साथ सम्पन्न। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और श्रीलंका के बीच चौथे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 222 रन का लक्ष्य दिया। स्मृति मांदना ने 80, वहीं शेफाली वर्मा ने 79 रन की बेहतरीन पारी खेली। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। बेहतरीन बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने इस श्रृंखला में,
बहुत शानदार प्रदर्शन। और देखिए कि ये पहला मौका इस सीरीज में ऐसा है कि भारतीय टीम पहले खेल रही है
जी।
तो अभी तक उन्होंने चूंकि लक्ष्य का पीछा किया था
जी,
तो हमेशा उनके सामने एक मामूली एक स्कोर बनाने की चुनौती थी। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा रहा कि पहले खेले तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारी जो बल्लेबाजी में जो गहराई है
जी,
वो मतलब संपूर्ण रूप से हम गहराई वाले बल्लेबाजी वाली टीम है। क्योंकि आप देखिए कि जो भी बल्लेबाज आया उसने अपने तरीके से पूरा योगदान दिया। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। स्मृति मंदाना की विशेष रूप से तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा भी छुआ आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मतलब जो तीनों फॉर्मेट हैं, और वो भारत की दूसरी ऐसी बल्लेबाज बन गई जो इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो ये सब उपलब्धियां रही और जो रन है हमारे सामने जो दिख रहे हैं स्कोरबोर्ड पे वो एक लाजवाब, मतलब एक आप कह सकते हैं कि पारियों की वजह से ये स्कोर भारत ने बनाया।
और जैसे आपने स्मृति मांदना की बात की, 2-3 मुकाबलों में उनका बल्ला चला नहीं, लेकिन शेफाली वर्मा लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और इस मुकाबले में भी दोनों ने कीर्तिमान स्थापित किया, सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में 3,107 रन बनाने का।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए कि स्मृति का 40 रन अभी तक टोटल आया था तीन पारियों में, मात्र 13 करीब का एक औसत था। लेकिन जो आज जो इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी खेली, तो शेफाली का जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि वो फॉर्म में लगातार चल रही थी, वो उसको बरकरार रखने में सफल रही और यहां से स्मृति अब कम से कम वापस आई हैं जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है। और मुझे लगता है उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा तीन पारियों में इस तरीके से, वो असफल ही कहेंगे, 13 का औसत कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी बल्लेबाज वो मानी जाती है, टीम की रीढ़ है एक तरीके से। तो उसके बाद जिस तरीके की पारी खेली है और एक जो एक कीर्तिमान आपने बताया और एक जो मैं कीर्तिमान उनके व्यक्तिगत बता रहा था, तो दो कीर्तिमानों तक वो पहुंची। तो निश्चित तौर पे ये एक बढ़िया बढ़िया पारी है, भारतीय टीम के लिए एक बढ़िया शुरुआत है। 20 ओवर में इससे ज्यादा रन और हम भारतीय महिला टीम से और क्या उम्मीद करेंगे। 200 के आसपास सोच रहे होंगे जो मैच देखने वाले दर्शक हैं हमारे। कप्तान ने भी कहा था कि हमने कोई टारगेट नहीं सोचा है मन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया स्कोर देने में सफल रहे
जी। और तीन मुकाबलों में भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे हमने देखा कि किस प्रकार गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब भारत के पास एक बेहतरीन स्कोर है गेंदबाजों के पास, 222 रन का लक्ष्य जो दिया है, ऐसे में वैष्णवी हो गई या और क्रांति गौड़ हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, कितना आसान होगा उनके लिए इस रन को बचाना।
नहीं देखिए, निश्चित तौर पे अगर बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो गेंदबाजों के लिए काम आसान हो जाता है
जी।
क्योंकि अभी देखिए कि ये थोड़ा ऐसा चैलेंजिंग, क्या कहेंगे कि एक बहुत मुश्किल ही स्कोर है जहां तक कोई टीम पहुंच सकती है
जी।
क्योंकि आपको कम से कम 11 के ऊपर का एवरेज बनाए रखना है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। आपके पास 20 ही ओवर का खेल है, गेंदबाज भी बदलते हैं
जी,
है ना, 4 ओवर का ही कोटा है। अगर किसी गेंदबाज को मान लीजिए आपने निशाना बना भी लिया किसी बल्लेबाज ने, तो कितने समय तक
जी।
तो ये सब चीजें हैं और जिस तरीके का फिनिश किया भारतीय टीम ने वो भी एक देखने वाली बात थी कि जो जिस तरीके से कप्तान के साथ जो है ऋचा घोष जब खड़ी थी और लगातार एक लंबे लंबे शॉट लग रहे थे, तो वो उसका काफी अहम योगदान रहा। कि हालांकि पहले भी ऐसा नहीं लग रहा था कि 200 पार नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 221 तक पहुंचना थोड़ा सा एक मुश्किल काम था, लेकिन वहां तक पहुंचने में सफल रहे। तो इससे जरूर विरोधी टीम तो एक बार की बल्लेबाजों की सामने अब चैलेंजिंग एक एक, एक चुनौती है, पहाड़ पे चढ़ने, एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा टारगेट है उनके लिए। तो गेंदबाजों का काम तो बहुत आसान हो गया होगा और हमारी गेंदबाजी अभी तक लगातार अच्छी रही है, चाहे वो दीप्ति रही हो, चाहे अन्य गेंदबाज रही हो, उन्होंने रेणुका रही हो, सबने अच्छी गेंदबाजी करी है
जी। आपने ऋचा घोष की भी बात की, तो 250 के स्ट्राइक रेट से आज उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 40 रन बनाए 16 गेंद पर,
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी। हम लोग स्टूडियो में आने से पहले आपके साथ खुद आपके जो टीवी पे देख रहे थे खेल, तो वो तो बहुत जबरदस्त खेल वो दिखा रही थी। क्योंकि देखिए अब सीरीज आपके हाथ में है, अब आपको अपनी तैयारियों के तरीके से धार देने वाली बात है
जी।
जो अब आगे वाले समय में जो भी टूर्नामेंट होने, हालांकि ज्यादातर तो यही कहा जा रहा है कि ये विश्व कप की तैयारी, लेकिन अभी उसमें मुझे लगता है समय है, जून में होना है वो इंग्लैंड में जाके, तो अभी तो ये साल का अंत है, तो लेकिन माना तो यही जा रहा है कि उसी तैयारी के सिलसिले में अभी सब जितनी भी श्रृंखलाएं खेली जा रही, जितनी भी सीरीज हो रही है, और उसी हिसाब से टीम को एक आकार देना है, एक शेप देना है
जी।
तो बहुत बढ़िया उस हिसाब से कहा जाएगा। मुझे लगता है कि ये अभी तो ये चौथा ही मैच अभी आधा ही हुआ है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से बल्लेबाजों ने अपने आंकड़े अच्छे किए हैं, गेंदबाज भी करने में सफल रहेंगी और एक अच्छी टीम का जो है वो गठन अच्छे से हो पाएगा
जी। और श्रोताओं, इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल में अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, 221 रन बनाकर 216 रन उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे। उधर BCCI ने आगामी Under-19 एक दिवसीय विश्व कप के लिए आयुष मात्रे को कप्तान नियुक्त किया है। ये प्रतियोगिता 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेली जाएगी। वहीं 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए कप्तानी सौंपी गई है। ये श्रृंखला 3 से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। दक्षिण अफ्रीका का जो टूर है वो काफी अहम होगा Under-19 एक दिवसीय विश्व कप के मद्देनजर।
जी बिल्कुल, देखिए वही जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अपनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो वो भी एक तैयारी के तौर पे उस दौरे को लिया जा रहा है
जी।
दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं होंगे उसमें जो जो वर्ल्ड कप टीम में लिए गए हैं, तो इसलिए सूर्यवंशी जो है वहां कप्तानी संभालेंगे
जी,
लेकिन अन्य खिलाड़ी उनके साथ होंगे टीम वाले। मुझे लगता है कि अच्छा ही प्रदर्शन होना चाहिए, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं सूर्यवंशी, अगर कप्तान के तौर पे भी उसी तरीके से वो कुछ कर दिखाते हैं तो ये एक सोने पे सुहागा जैसी बात होगी उनके लिए
जी।
और व्यक्तिगत तौर पे तो वो एक अपने लिए
कीर्तिमान
स्थापित कर ही रहे हैं
जी।
और जहां तक बात है उनके साथ टीम में जो खिलाड़ी हैं अभिज्ञान कुंडू, उन्होंने दोहरा शतक लगा के कुछ समय पहले ये अपना दमखम दिखाया था,
एरन जॉर्ज ने भी लगाया,
बिल्कुल एरन जॉर्ज भी हैं उनके साथ, तो अच्छी टीम होगी। और Under-19 से ही निशांत आप सब जानते हैं लंबा इतिहास रहा है कि इसी टीम से हमें सीनियर टीम के लिए खिलाड़ी मिलते हैं
जी।
तो और राहुल द्रविड़ ने भारतीय सीनियर टीम का कोच बनने से पहले इसीलिए Under-19 टीम की कोचिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो टैलेंट है जो हमारा वो वहीं से ही आएगा। और पूर्व में भी हम देखते रहे जितने भी हमारे बड़े खिलाड़ियों के आप नाम लीजिए, सब Under-19 खेल के ही यहां तक पहुंचे हैं
जी।
तो इस टीम पे ज्यादा अच्छा फोकस भी होना चाहिए, BCCI का भी फोकस होना चाहिए, हमें भी लगातार निगाह रखनी चाहिए कि कौन खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं
जी,
उनकी प्रशंसा हो, वो आगे आए और भविष्य में हमारी सीनियर टीम के लिए वो कुछ करें उसके मतलब
जी, देश में और
जी बिल्कुल बिल्कुल परचम लहराएं
जी। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। विजयवाड़ा में 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सूर्या करिश्मा तामिरी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सूर्या करिश्मा ने फाइनल में तन्वी पात्री को हराया। उधर महिला डबल्स में शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट के ने प्रिया देवी कोंजंगबन और श्रुति मिश्रा को खिताबी मुकाबले में हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में ऋत्विक संजीव एस ने भरत राघव को हराकर खिताब जीता। हरिहरन और रुबन कुमार की जोड़ी ने मिथिलेश कृष्णन और प्रेजन को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं मिक्स डबल्स के फाइनल में सात्विक रेड्डी के और राधिका शर्मा ने आशीष सूर्या और अमृता पी को हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। बेहतरीन प्रदर्शन किया सभी खिलाड़ियों ने साल का अंत खिताब जीतकर।
जी बिल्कुल, देखिए सूर्या करिश्मा की जहां तक बात की जाए, उन्होंने टॉप सीड उन्नति उड्डा को हराया, उसके बाद उन्होंने रचिता श्री को हराया, वो भी उनसे ऊपर के रैंकिंग, बहुत ऊपर के रैंकिंग की खिलाड़ी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमें नेशनल चैंपियन मिली है वो काफी यंग है और उनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी बैडमिंटन प्रेमियों को, बाकी खेल प्रेमियों को, क्योंकि ये लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई इतने यंग खिलाड़ी ऐसे जीत के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय बैडमिंटन टीम के जो प्रदर्शन है वो भी काफी सुधरा है
जी,
बतौर टीम सुधरा है, बतौर व्यक्तिगत तौर पे खिलाड़ियों का अच्छा रहा है, तो भारतीय बैडमिंटन अच्छी दिशा में जा रहा है मुझे लगता है निशांत
जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 खेल के लिहाज से एक यादगार साल रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं और खिलाड़ियों की प्रशंसा की।
हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया, भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया, पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती।
प्रधानमंत्री ने जब जब भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, चाहे वो पैरा गेम्स हो या फिर क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, तो उनसे मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया।
नहीं देखिए, ये एक अच्छी मुझे पहल लगती है अभी जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब भी कोई चाहे किसी भी बड़े मंच पे हो या और भी जो अन्य दीगर प्रतियोगिताएं हैं, वहां से खिलाड़ी जीत के आते हैं तो वो या तो उनसे बात करके या उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलके उनका हौसला बढ़ाते हैं। और यही नहीं, मतलब वो हर खिलाड़ी के बारे में जानना भी चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो मिलते हैं उनसे, उससे पहले उसके बारे में जानकारी भी थोड़ी बहुत वो रखते हैं कि इस खिलाड़ी का क्या मजबूत पक्ष है, ये क्या पसंद करता है, परिवार किस तरीके का है इनका, और वो उनसे उसी तरीके की फिर वो बात करते हैं जिससे कि वो लोग उनके साथ सहज हो सके। आप देखिए ना कि खिलाड़ी तो बड़े साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, मेहनत मशक्कत करके वो यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर सीधे अगर आप कोई प्रतियोगिता जीत के आ रहे हैं, क्या सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जाना उनके आवास पे, तो ये एक एक बड़ी चीज होती है। जैसे हमें नीरज चोपड़ा का याद है कि भाई तुम्हें चूरमा पसंद है, किसी से कहा हम पराठे खाएंगे तुम्हारे घर आके, या अपने वहां से कुछ लेके आना जो तुम्हें ये पसंद है, तो इस तरीके की वो सहज करने वाली बातें करते हैं। इसके अलावा भविष्य की बातें भी उनसे पूछते हैं कि भाई अब अगली प्रतियोगिता होगी तुमने क्या तय किया है, तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या लक्ष्य बनाया है, तो काफी अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं कि बतौर मतलब देश के तो वो प्रमुख ही हैं, लेकिन खेलों के भी जिस तरह से वो चिंता करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू है।
उधर वर्ष 2025 का आखिरी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता स्थानीय केंद्र में संपन्न हुआ। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का ये 54वां संस्करण था। इसमें करीब 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इवेंट में एथलीटों, कॉरपोरेट प्रोफेशनल, छात्रों, CISF जवानों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों और सभी उम्र के लोगों सहित बड़ी संख्या में साइकिल चालक शामिल हुए। ओलंपियन और अर्जुन अवार्ड विजेता दीपिका कुमारी ने कहा, ऊर्जा और ताकत न केवल खेलों लिए बल्कि निजी जिंदगी के लिए भी जरूरी है।
संडे ऑन साइकिल बहुत अच्छा मूवमेंट है, ये एक नॉर्मल लोग के लिए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज जितना हम फिट रहेंगे उतना हम अपने आने वाले दिनचर्या में हम फिट रहेंगे और हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हम मेंटली भी फिट हो सकते हैं।
करीब 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे भारतवर्ष में हिस्सा लिया, एक बेहतरीन पहल।
नहीं, देखिए लगातार चल ही रहा है, काफी हम लोग संडे को ये बात करते आए हैं और पढ़ते भी हैं मीडिया में, और खिलाड़ी भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे आज दीपिका कुमारी ने अपना ये बताया, तो ये अच्छी एक पहल है, क्योंकि अगर आप जितना यूथ को इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं तो वो फिट रहने के लिए भी जरूरी है और खेलों के लिए तो वो सबसे अहम पक्ष है।
जी, महिला 35 टेनिस प्रतियोगिता में वैदेही चौधरी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। वैदेही ने फाइनल मुकाबले में जापान की मिजिका ओजेकी को हराया। इस जीत के साथ वैदेही ने चौथा ITF सिंगल्स खिताब भी अपने नाम कर लिया।
नहीं, वैदेही का प्रदर्शन काफी, जैसे हम बैडमिंटन में बात कर रहे थे करिश्मा की, उसी तरीके से आप इस यहाँ पे वैदेही के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, काफी बड़े खिलाड़ियों को हराया, सीडेड प्लेयर्स को हराया अपने से ऊपर, और ये खिताब अपने नाम किया, तो वो भी अपनी एक अच्छी एक पहचान बनाना चाह रही हैं। और ये टूर्नामेंट का जो लेबल है वो ऐसा है कि बहुत ही नीचे से ऊपर के बीच में है ये, तो आगे जाने के लिए इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन बहुत जरूरी है।
जी, और श्रोताओं, श्रीलंका ने अपने पारी की शुरुआत कर दी है। दूसरे ओवर में उन्होंने बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए हैं। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ प्रशांत कुमार को